प्रकृति और स्वभाव का शेष अंश पृष्ठ 11। इससे प्रकट होता है कि उनकी अंतःकरण के सबसे प्रधान वृत्ति थी सरलता, जिसकी विपरीतता के सहन नहीं कर सकते थे। अतः इस थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट को भी सरलता के अंतर्गत लेकर संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गोस्वामी जी का स्वभाव अत्यंत सरल, शांत, गंभीर और नम्र था। सदाचार की तो वे मूर्ति थे। धर्म और सदाचार को दृढ़ न करने वाले भाव को, चाहे वह कितना ही ऊंचा हो, वे भक्ति नहीं मानते थे। उनकी भक्ति वह भक्ति नहीं है जिसे कोई लंपटता या विलासिता का आवरण बना सके। पैराग्राफ चेंज। यद्यपि गोस्वामी जी निर्भिमान थे, पर लोकवश या भयवश हीनता प्रकट करने को वे सच्चा दैन्य नहीं समझते थे, आत्मगौरव का ह्रास समझते थे। राम की शरण में जाकर वे निर्भय हो चुके थे। राम से याचना करके वे अयाचमान हो चुके थे। अतः पद है, कृपा जिनकी कछु काज नहीं, न अकाज कछु जिनके मुँह मोरे। उनकी प्रशंसा या खुशामत करने वे क्यों जाते? उनकी प्रशंसा करने वे सरस्वती का गला दबाना समझते थे। पद है, किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनी गिरा लागी पछिताना। इस समझ के अनुसार वे बराबर चले। उन्होंने कहीं किसी ग्रंथ में अपने समय के किसी मनुष्य की प्रशंसा नहीं की है। वे सच्चे स्नेह के नाते उत्तम आचरण पर रीझ कर उन्होंने अपने मित्र टोडर के संबंध में चार दोहे कहे हैं। भारत भूमि में उत्पन्न होना वे गौरव की बात समझते थे। इस भूमि में और अच्छे कुल में जन्म को वे अच्छे कर्मों के साधन का भगवान की कृपा से मिला हुआ अच्छा अवसर मानते थे। क पद है, भली भारत भूमि, भले कुल जन्म, समाज शरीर भली लहिके, जो बजे भगवान सयान सोई, तुलसी हट चातक ज्यों गहिके। ख दियो सुकुल जन्म शरीर, सुंदर हेतु जो फलचारी को, जो पाई पंडित परम पद, पावत पुरारी मुरारी को। यह भरत खंड समीप सुरसरी, थल भलो संगति भली, तेरी कुमति कायर कल्प बल्ली, चहती विस्फल फली। गोस्वामी जी लोकदर्शी भक्त थे, अतः मर्यादा की भावना उनमें हम बराबर पाते हैं। राम के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का अनुभव करते हुए भी वे उनके सामने अपनी बात कहने अदब कायदे के साथ जाते हैं। माधुर्य भाव की उपासना से उनकी उपासना की मानसिक पद्धति स्पष्ट अलग दिखाई पड़ती है। विनय पत्रिका में वे अपनी ही अवस्था का निवेदन करने बैठे हैं, पर वहाँ भी वे लोक प्रतिनिधि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। पृष्ठ 12। वे कली की अनीति और अत्याचार से रक्षा चाहते हैं, जिनसे केवल वे ही नहीं समस्त लोक पीड़ित है। उनकी मंगलाशा के भीतर जगत की मंगलाशा छिपी हुई है। वे अपने को लोक से असंबद्ध करके नहीं देखते। उन्हें उनके आराध्य राम किसी एकांत कोने में नहीं मिलते, भरे दरबार में, खुले संसार में मिलते हैं। विनय पत्रिका रामचंद्र जी के दरबार में गुजरने वाली अर्जी है, जिसकी तहरीर जबरदस्त है। यह अर्जी यूं ही बाला बाला नहीं भेज दी जाती है। कायदे के खिलाफ काम करने वाले, मर्यादा का भंग करने वाले आदमी तुलसीदास जी नहीं है। बीच के देवताओं और मुसाहबों के पास से होती हुई तब हुजूर में गुजरती है। वहाँ पहले से सधे हुए लोग मौजूद हैं। हनुमान और भरत धीरे से इशारा करते हैं कोष्ठक में। दस्तवार है, ठट्ठा नहीं है। कोष्ठक बंद। तब लक्ष्मण धीरे से अर्जी पेश करते हैं और लोग भी जोड़ देते हैं। अंत में महाराजा धीराज हंसकर कहते हुए कि मुझे भी इसकी खबर है, मंजूरी लिख देते हैं। कुछ रत्न पारखियों ने सूर और तुलसी में प्रकृति भेद दिखाने का प्रयास करते हुए सूर को खरा स्पष्टवादी तथा तुलसी को सिफारसी खुशामदी या लल्लो चप्पो कहने वाला कहा है। उन्होंने सूर की स्पष्टवादिता के प्रमाण में ये वाक्य पेश किए हैं। सूरदास प्रभु वै अति खोटे, यह उन्हों ते अति ही खोटो। दूसरा है, सूरदास सर्वस्व ज्यों दीजे, करो कृत ही न माने। उन दोनों पदों पर जिनमें ये वाक्य आए हैं, जो साहित्य की दृष्टि से थोड़ा भी विचार करेगा वह जान लेगा कि कृष्ण न तो वास्तव में खोटे कहे गए हैं न कलूटे कृतघन्य। ये वाक्य तो विनोद या परिहास की उक्तियां हैं। श्रृंगार रस में सखियां इस प्रकार का परिहास बराबर किया करती हैं। तुलसी पर लगाया हुआ दूसरा इल्जाम जिससे सूर बरी किए गए हैं यह है कि वे रह रहकर फजूल याद दिलाया करते हैं कि राम ईश्वर हैं। ठीक है, तुलसी ऐसा जरूर करते हैं, पर कहाँ, रामचरितमानस में। पर रामचरितमानस तुलसी का एकमात्र ग्रंथ नहीं है। उसके अतिरिक्त तुलसी के और भी कई ग्रंथ हैं। क्या सब में यही बातें पाई जाती हैं? यदि नहीं, तो इसका विवेचन करना चाहिए कि रामचरितमानस में ही यह बात क्यों है। मेरी समझ में इसके कारण ये हैं। पहला, रामचरितमानस की कथा के वक्ता तीन हैं, शिव, याज्ञवल्क्य और काकभुशुंडी। श्रोता है पार्वती, भारद्वाज और गरुड़। इन तीनों श्रोताओं ने अपना यह मोह प्रकट किया है कि कहीं राम मनुष्य तो नहीं है। तीनों वक्ता तो कथा कह रहे हैं, वह इसी मोह को छुड़ाने के लिए, इसलिए कथा के बीच बीच में याद दिलाते जाना बहुत उचित है। गोस्वामी जी ने भूमिका में ही इस बात को स्पष्ट करके शंका की जगह नहीं छोड़ी है। दूसरा, रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है जिसमें कथा का प्रवाह अनेक घटनाओं पर से होता हुआ लगातार चला चलता है। पृष्ठ 13। इस दशा में कथा प्रवाह में मग्न पाठक या श्रोता को असल बात की ओर ध्यान दिलाते रहने की आवश्यकता समय समय पर उस कवि को अवश्य मालूम होगी जो नायक को ईश्वरावतार के रूप में ही दिखाना चाहता है। फुटकल पद्यों में इसकी आवश्यकता न प्रतीत होगी। सूरसागर की शैली पर तुलसी की गीतावली है, उनमें यह बात नहीं पाई जाती। जबकि समान शैली की रचना मिलती है तब मिलान के लिए उसी को लेना चाहिए। 3. श्री कृष्ण के लिए हरि, जनार्दन आदि विष्णुवाचक शब्द बराबर लाए जाते हैं, इससे चेतावनी की आवश्यकता नहीं रह जाती। गोपियों ने कृष्ण के लिए बराबर हरि शब्द का व्यवहार किया है।